शांति। तो हम सब के बीच में ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक पवित्रता का, निर्मलता का फरिश्ता, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी पहुंच गए हैं। दर्शनीय मूर्त हमारे बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की पधरामणि हुई ब्रह्मा बाबा के तन में 1936 यज्ञ की स्थापना हुई और दीदी का लौकिक जन्म एक साल पूर्व 1935 में हुआ। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न है और मुंबई में ही रहते मम्मा बाबा और दादियों से भेंट हुई और वहीं से आपका सफर आरंभ हुआ अध्यात्म का। 1962 में आपने अपनी मेडिकल स्टडीज जस्ट पूरी ही की थी और आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और फिर तो आप इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते रहे, अपनी लौकिक जॉब करते रहे। 1966 में बाबा की राय सलाह से आपने क्लिनिक भी खोला और सेवा केंद्र भी खोला। सेवा केंद्र जो आपके लौकिक पिता ने आपको दहेज के रूप में प्रदान किया। शुरू से ही अपने हिस्से का धन बाबा के यज्ञ में सफल कराने का दीदी का संस्कार रहा, जो आज दिन तक भी हम देखते हैं कि कईयों के धन सफल करा के 21 जन्मों का भाग्य निर्माण करने में दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद आप सेवाएं करते रहे, मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों के द्वारा। फिर 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए सिलेक्ट किया। 71 से लेकर 78 तक विदेश की धरनी पर अलग अलग स्थानों पर जाकर आपने बाबा की सेवाएं की। सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के बच्चे निकाले। आरंभ में तो आप लंदन गए, यूके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, मॉरिशस, फिजी आदि आदि कई स्थानों पर जाके सेवाओं की शुरुआत की। लेकिन फिर 1978 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी को आपने अपना बेस बनाया और उसी बेस सिडनी में रहकर 1978 से लेकर 2008 तक आपने एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का खूब विस्तार किया। आज की डेट में इस रीजन के अंतर्गत करीब 18 देश आते हैं जहां बाबा के सेवा केंद्र है और बाबा के बच्चे हैं, अनमोल रतन है। और फिर तो 2009 में ज्ञान सरोवर का डायरेक्टर पद मनोहर दादी के अव्यक्त होने से रिक्त हो गया, बाबा ने आपको यहां बुलाया। तो वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन के भी डायरेक्टर हैं, तो साथ साथ डायरेक्टर आप हैं ज्ञान सरोवर अकेडमी के। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ हमारी दादियां एडवांस पार्टी में आगे बढ़ती गई, अव्यक्त होती चली गई, तो कंधों पर जिम्मेवारी और बढ़ती गई। तो वर्तमान में आप हमारे यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। जिम्मेवारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उपराम अवस्था भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। आप अपने कर्मातीत अवस्था के बहुत नजदीक चले जा रहे हैं। जितनी ही सेवाओं में बिजीनेस है उतना ही फिर जीवन में इजीनेस भी है। और फिर सभी की आपने पालना ली है, आज हमारे पास सभी अव्यक्त रूप में ही है वो आदि रतन, लेकिन हमारे पास दीदी है जिन्होंने मम्मा बाबा और सभी आदि रत्नों को आंखों से देखा है, उनकी पालना ली है। और विशेष करके आज क्योंकि ये महीना चल रहा है दादी जी का, तो दादी और दीदी की तो हंसों की जोड़ी सभी याद करते हैं। तो आज दीदी जी उन दोनों की विशेषताएं, दादी जी और दीदी जी की विशेषताएं हम सबके सामने रखेंगे और उसके बाद आप सबको खुले मार्जिन होगी, आप चाहे जो प्रश्न दीदी से पूछे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले दीदी दादी और दीदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे उसके बाद। तो अभी सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा ने दीदी जी को मधुबन में रखा। उसके पहले दीदी जी दिल्ली में थे, उनका नाम गोपिका था ओरिजिनल, और सचमुच वो बाबा के गोपिका थे। पर शुरू में उनको बंधन था, उसके माँ बहन वो चाची चाची के दो लड़कियां सब बंधन में थे। उसने क्या किया, सोइंग क्लास शुरू किया ताकि रिश्तेदार को कह सके मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आश्रम का नहीं खाती हूं या उसकी पालना नहीं लेती हूं। पीछे कुछ समय के बाद बाबा ने यज्ञ में छुट्टी दी। दीदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था और मम्मा की ड्यूटी उन्होंने संभल ली। फिर विदेश से जब विदेशी आते थे तो दीदी जी को क्लास के बाद मिलने जाते थे, दीदी जी उनको दृष्टि देती थी और सवाल पूछती थी मुरली से, वो मुरली की पॉइंट क्वेश्चन आंसर में सवेरे लिखती थी, तो वो सवाल पूछती थी उनको और मुरली में क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बाद तो दादी प्रकाशमणि ही मुरली सुनाती थी और दीदी जी हमेशा क्या करती थी, फर्स्ट रो में फर्स्ट बैठते थे और सफ़ेद लाइट होने के पहले पहुंच जाती थी। तो दीदी जी आई थिंक 1983 में उन्होंने शरीर छोड़ा, ब्रेन ट्यूमर हुआ और उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों में ही शरीर छोड़ा। तो जब बाबा मम्मा के स्थान पर दीदी और दादी को नियुक्त किया गया तो एक साल तो सब कंप्लेन करते रहे कि ओ बाबा हमें ऐसे ट्रीट करता था, बाबा हमें ये भेजता था आदि आदि कंपेयर करते थे। परंतु एक साल के बाद कहने लगे कि दादी दीदी से हमको मम्मा बाबा की वासना आती है। तो दादी दीदी ने मिलकर यज्ञ की बहुत वृद्धि की। बाबा के समय 100 के करीब सेंटर थे और दादी ने जब शरीर छोड़ा तब 100 के ऊपर कंट्री में बाबा के सेंटर हो गए थे। तो दादी जी के मुरली कोई मिस नहीं करते थे। मधुबन वासी एटलीस्ट ज्ञान सरोवर में हम देखते हैं 50% ज्ञान सरोवर वासी मुरली में होते हैं। कोई कहाँ सुनते हैं, कोई कहाँ सुनते हैं। और अमृत वेला भी थोड़े ही आते हैं, पर दादी के समय कोई मधुबनवासी सेवा के बहाने रुकते नहीं थे। और दादी जी जो भी कार्य होता है था उसमें पहले खुद आ जाते थे। मिसाल के तौर में एक दिन भोजन वाली लिफ्ट है वो चलती नहीं थी, तो डाइनिंग वाले गए दादी के पास के दादी लिफ्ट चालू नहीं है, बड़े बड़े पतीले ऊपर कैसे ले जाएं। तो दादी खुद चली और 5-6 भाइयों को तैयार किया और खाना टाइम पर पहुंचा दिया। दादी जी यहाँ जहाँ धोबी के कपड़े रहते हैं वहाँ कभी कभी बैडमिंटन खेलते थे, कभी कभी पीस पार्क में क्रिकेट खेलते थे। और एक बारी तो वो कहते हैं ना आंख पर पट्टी बांध कर मटका फोड़ने के, वो गेम भी दादी ने खेले। तो बीच बीच में दादी क्या करती थी, ठंडी के दिनों में मुरली सुनाते सुनाते कहती थी, बोली दादी आज इनों को सबको गरम गरम पकौड़े खिलाना। तो बोली दादी ओम शांति भवन के फॉयर में जहाँ आजकल तो लक्ष्मी नारायण का चित्र वगैरह है, वहाँ सिगड़ी ला के गरम गरम पकौड़े, जो भी क्लास से आते थे उनको गरम गरम पकौड़े देती थी। कभी कभी हलवे का ऑर्डर देती थी कि गरम गरम हलवा देना। तो भोली दादी को तो ऑर्डर मिलता और तैयार कर देती थी। कभी कभी मुरली में दादी को ख्याल होता था कि आज मुरली के बाद पिकनिक पीस पार्क में करें, तो उसकी भी तैयारी एकदम कर लेते थे और नाश्ता वहाँ फिर पीस पार्क में। एक बार पीस पार्क में भी मुरली सुनाए, शुरू शुरू में इतना डेवलप नहीं हुआ था पीस पार्क, तो हम लोग सब ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ बैठे और दादी ने मुरली सुनाए। तो दादी बहुत रमणीक थी और सबको माँ की भाषा आती थी। दादी ने जब शरीर छोड़ा तो मधुबनवासी कहते थे कि हम माँ को मिस करते हैं। जानकी दादी अच्छी टीचर थी पर दादी जी माँ थी। तो दादी जी जब ही दादी जी ने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रेलियन भाई वहाँ खड़ा था, सभी दादी जी से दृष्टि ले रहे थे और दादी जी ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी अंत में भी और लास्ट में बीमार होती थी। हम लोग पैसा लेके जाते थे तो मुन्नी बहन कहेंगे कि ये बहन जी पैसा लाई है, फौरन दादी आंख खोलती थी और पैसा ले लेती थी। तो यज्ञ की पालना करने का और धन जमा करने का दादी को बहुत शौक था। और फिर जानकी दादी सहयोग भी देती रही लंदन से। तो दादी जी एक बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थी और उसने यूएन में भाषण दिया, कई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में भाग लिया और अंग्रेजी में भी भाषण पढ़ लेती थी। तो इसलिए यूएन में आना जाना होता था और यहाँ भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ओम शांति भवन में रखी थी। और उस समय इतने मकान नहीं थे, एकोमोडेशन इतना नहीं था, सबको होटलों में रखा था, खाना यहाँ खाते थे, सारा दिन यहाँ बिताते थे। दिन के टाइम जब फ्री होते थे और रात को होटल में जाते थे, पर उस समय भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सबको एक साथ खाना मिल जाता था। तो जो गेस्ट आए थे वो प्रशंसा करते थे कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज होटल में जाते हैं तो हमको 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है, पर यहाँ 5 मिनट में सब डेलीगेट्स को भोजन मिल जाता है। तो इसलिए सब महिमा करते थे। और एक बारी तो दोनों दीदी दादी दोनों बीमार थे, व्हील चेयर पर हॉल में आए, परंतु कॉन्फ्रेंस एकदम ठीक चली। तो वो भी लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये दोनों दादियाँ बीमार होते भी इतना अच्छी रीति कॉन्फ्रेंस चली। तो दादी जी कौमार में रहते थे और बहुत कुमार उनके कारण ज्ञान में आए, इसलिए बाबा ने उनको नाम दिया कुमार का। वैसे उनका नाम था रामा, पर यज्ञ में कुमार का और अव्यक्त बाप दादा ने प्रकाशमणि का टाइटल दिया, तो ऑफिशियल नेम प्रकाशमणि। उनका एक बल एक भरोसा था बाबा में, पूरा भरोसा था। दुआओं के भंडार की मालकिन थे। मुरलीधर की मुरली पर पूरा अधिकार रखा और ओम शांति भवन में मुरली सुनाने आते थे, गुलदस्ता ऐसे ऐसे करते, फिर कहती थी आपको सुनना है मुझे आज बाबा ने क्या कहा है, तो रोज बाबा के रूम में होकर मुरली सुनाने आती थी, तो रोज कुछ न कुछ संदेश ले आती थी। संदेश ही नहीं थी, ध्यान में नहीं जाती थी, पर जैसे बाबा की प्रेरणा खींचती थी। और जब भी बाहर जाती थी द्वार पर, पहले बाबा के कमरे में जाएंगे, बाहर आकर सुनाएंगे कि बाबा ने क्या संदेश दिया। सदा यज्ञ की स्नेही और यज्ञ रसक रही। कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। ज्ञान में उनके लौकिक माता, मौसी वगैरह सब ज्ञान में थे, पर वो न्यारी और निर्लिप्त रही। सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी बहुत नशे से कहती थी मैंने कभी झूठ नहीं बोला है जीवन में। मान अपमान निंदा स्तुति में समान। मुझे याद है एक बारी यहाँ टीचर्स मीटिंग हो रही थी, पहले यहाँ टीचर्स की मीटिंग हो रही थी, तो हमारे एक सीनियर भाई ने इंसल्ट किया कि आप तो पढ़ी लिखी नहीं हो, आप क्या जानो, आप तो समाज में तो रहते नहीं हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं। पर दादी ने उसके प्रति कोई वैर भाव नहीं रखा। दादी उनको पहले की तरह रिगार्ड देती रही। एक बार 18 जनवरी को हमारा यहाँ योग चल रहा था, तो दीदी दादी ने निर्णय किया कि आज सबको रुलाना है। तो ऐसे ऐसे गीत बजाए और ऐसी ऐसी बातें की, सब रो पड़े। तो दीदी दादी हमेशा कहते थे, शरीर दो है, हमारी आत्मा एक है। कुछ भी होता था आपस में चर्चा करते थे, क्योंकि क्या होता था, दीदी नॉर्थ संभालती थी, दिल्ली पंजाब, और दादी है साउथ संभालती थी, बम्बई और महाराष्ट्र और साउथ। तो कई बार ब्राह्मण चालाक होते हैं ना, क्या करते हैं, दीदी से भी पूछते हैं, दादी से भी पूछते हैं, निर्भर भाई से भी पूछते हैं, पीछे अपने को जो पसंद आया कहेंगे हमको दादी ने छुट्टी दी है या निर्भय भाई ने छुट्टी दी है, ऐसे करके चला लेते थे। तो दीदी दादी क्या करते थे, यदि दादी के पास दिल्ली पंजाब वाले कोई आते थे तो दादी कहते थे कल आना, और फिर दीदी से चर्चा कर लेकर दोनों का जवाब एक होता था। गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण थे, सदा मैं और मेरेपन से दूर, पूरी समर्पित लाइफ थी। सम्मान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। सभी छोटी छोटी बहनों को भी बहन करके बुलाती थी, ऐसे नहीं मुझे सिर्फ निर्मला कहे, नहीं, डॉक्टर। और हम लोग जब विदेश जा रहे थे 5 जने 71 में, तो बहुत भव्य रीति से हमारा विदाई दी। यहाँ सबके आगे सब दादियाँ, किसी ने फल दिया, किसी ने जल छांटा, किसी ने तिलक दिया, किसी ने टोली दी, तो 4-5 दादियां थी, सभी ने हम पांचों का विदाई दी। तो मैं, रोजी बहन, शीलेंद्रा दादी, जगदीश भाई और रमेश भाई पांच जने पहले विदेश में गए, तो दादी ने सिलेक्ट किया हम लोगों को। क्या था कि 71 में जनवरी में योगा कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, इसमें अमेरिका वाले एक योगी ने निमंत्रण दिया, तो मैंने जब मधुबन में आई तो दादी से पूछा, दादी विदेश कौन जा रहा है अमेरिका में योग कॉन्फ्रेंस? दादी ने पूछा, तुमको जाना है? मैंने कहा मैं जा सकती हूँ, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं फर्दर स्टडी के लिए विदेश जाऊँ। मैंने कहा नहीं, मुझे विदेश नहीं जाना है, मुझे गांव की सेवा करनी है, विदेश जाके क्या करेंगे। तो मैंने कहा दादी को, मेरे लौकिक पिता खर्च करेंगे, तो हम जो भी गए अपना लौकिक से खर्चा कराया, सिर्फ जगदीश भाई उसका यज्ञ ने खर्चा किया। तो राउंड द वर्ल्ड टिकट निकाली थी और फिर मुझे लंदन में बिठा दिया और विदेश की सेवा में तब से लगा दिया। स्वभाव संस्कार मिलाने में दादी जी नंबर वन थी। पिताव्रता और पतिव्रता और एक व्रता, यज्ञ की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति, उनको निमित्त भाव था। इतनी बड़ी जिम्मेवारी, यज्ञ के इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे पत्र आते रहे, परंतु दादी इतनी हल्की, बेड में जाकर दो मिनट में सो जाती थी और सोने के पहले मुरली जरूर पढ़ती थी। तो सवेरे जब हम जाते थे, कई बार मुरली के पहले हम जाते थे दादी को मिलने के लिए, तो दादी मुरली की पॉइंट सुनाती थी हम लोगों को। दीदी है वो 8 बजे तक किसी से बात नहीं करती थी, मौन रहती थी। उन दिनों में एक नियम निकला था कि सभी को 8 बजे तक मौन रखना है, तो दीदी उस पर पक्की थी। एक बारी मीरा और हेमलता विदेश की बहनें मुरली के पहले गई दीदी के कमरे में। दीदी पूछती है, अर्जेंट है? नहीं, जाऊं मुरली के बाद आना। और मैं गई एक दिन, मुझे भी कुछ कारोबार था, तो मैं तो चालू आवाज में बोल रही थी, दीदी के धीरे से बोलो। तो धीरे से बोलने को कहा। हर संकल्प श्वास और समय को सफल करने और कराने वाले थी दादी। अनुभवों की अथॉरिटी के साथ नम्रता का अवतार, निश्चय और विश्वास के आधार पर यज्ञ को आगे बढ़ाया। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि के वरदानी थे। बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। दीदी दादी ने यज्ञ को ऐसे चलाया जैसे मम्मा बाबा ने, जैसे बाबा है सर्दी में सबको ब्लैंकेट लेबरर को देता था, और रास्ते चलते ठंडी में देखता था किसी लेबरर के पास गरम नहीं है तो फौरन लच्छू को कहता था, लच्छू इनको स्वेटर दो। तो दीदी दादी भी ऐसे ही सबकी पालना की, तो बेहद की बुद्धि बेहद की भाव, किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं रखा, सदा गुण ग्राही थे, सदा संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करने की उनकी भावना थी। योग युक्त दिव्यता संपन्न हर्षित चेहरा, अतीन्द्रिय सुख के खजाने से संपन्न, लक्ष्य के समान सदा लक्षण धारण करने में नंबर वन। तो बंबई में दादी 1964 में आई, मैं 62 एंड में ज्ञान में आई। तो वो आई, फिर बाबा ने निर्मल शांता दादी को कलकत्ता भेजा। तो तब से दादी ने बंबई संभाला, और जब तक दादी जान के लंदन आई 74 में, तब तक मतलब 71 से 74 दादी प्रकाशमणि देश विदेश दोनों का कारोबार संभालती थी। तो समझो हमारे हमारा उनका संपर्क 64 से 74 तक रहा, और भल दादी जान के विदेश सेवा की देखभाल करती थी, परंतु क्या होता था दादी के पास क्यू लगती थी, जान के दादी के पास इंद्रप्रस्थ में क्यू लगती थी, जिनको पर्सनल मुलाकात करने वाले थे। तो हम क्या करती थी, हमको जल्दी जवाब चाहिए था, क्यों मैं खड़ा नहीं रहना था, तो हम दादी प्रकाशमणि के पास चली जाती थी, और मैं पूछती थी मुन्नी बहन को कि मुझे मिलना है, दादी फौरन बुला लेती थी, 5 मिनट में काम हो जाता था। तो इसलिए ये भी सहज था। और ठंडी के दिनों में दादी यहाँ आंगन में निर्भर भाई के ऑफिस के पास बैठती थी, तो जो भी आते जाते थे ओम शांति करते थे, किसी को बात करनी होती थी तो बात कर लेते थे। तो दादी सहज ही उनसे मिल लेती थी। देखो दूसरी संस्था में कोई बड़े साधु संत महात्मा को मिलना होता था सहज नहीं होता था, परंतु यहाँ मम्मा बाबा दीदी दादी मिलना काफी सहज हो गया था। इतने ब्राह्मण भी नहीं थे मम्मा बाबा के टाइम, परंतु सहज। ओम शांति इंदिरा।
तो आप सभी को अच्छा लगा, दीदी ने जितनी सहजता की बात की, दीदी स्वयं कितने सहज है देखो। दीदी भी ज्वाइंट है इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के पद पर। आप आए ना आए, दीदी पहले आके बैठे। हाँ, ऐसा कभी होता है कहीं बाहर की दुनिया में? हाँ, कि एक ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का पद है। अभी क्लास में आने वाले पहुंचे नहीं है, लेकिन दीदी आके आराम से बैठ गए हैं। कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो दीदी उतने ही, जितना दादी और दीदी का वर्णन किया तभी हमने कहा कि हमारे सामने आज वो दादियां वो दीदियां नहीं है, मम्मा बाबा नहीं है, लेकिन दीदियों ने, इन दीदियों ने उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखा और अपने जीवन को उसी तरीके से ढाला है कि जिनके जीवन को देखकर हमें समझ में आता है कि बाबा ने मम्मा ने कैसे पालना की होगी सबकी, कितनी सहजता से सबको मिले होंगे। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जैसे कहा था, आपको ओपन मार्जिन है, जिसको भी पूछना हो आ जाए सामने माइक पे, अपना प्रश्न बोले और दीदी आपको जवाब देंगे। वो दीदी के अनुभव के आधार पर भी हो सकता है या ज्ञान योग से संबंधित भी हो सकता है। आप चाहे जो पूछना चाहे। हाँ, जो ओटे सो अर्जुन, ऐसे टाइम नहीं गवाओ। हाँ, किसी को पूछना है या दीदी विदेश सेवा में कैसे रहे? हाँ, अचानक से दीदी को सिलेक्ट किया, यहाँ तो एक सेंटर छोड़ने के लिए कहो, दूसरे सेंटर में थोड़ा सा भारीपन आ जाता है। हाँ, दीदी ने कैसे सब कुछ त्याग किया और फिर विदेश से भी एक आवाज गई कि यहाँ खाली जगह है, आपको आना है, और दीदी आ गए। तो दोनों तरफ से दीदी बहुत इजी रहे। तो आपको जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं, यहाँ भरपूर है। ज्ञान योग से संबंधित कोई प्रश्न, धारणा से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, वहाँ की सेवाएं कैसे और भारत की सेवाएं कैसे? जी दीदी, हाँ जी, हाँ दीदी, यहाँ आप यहाँ रहते हुए भी विदेश को कैसे संभाल रहे हो?
लास्ट ईयर तक मैं बड़े बड़े शहरों में चक्कर लगाती थी। 30 साल तो परमानेंट रही वहाँ, 78 से 2008 तक, 2009 में यहाँ आई। पर यहाँ 2009 से 2022 तक क्या करती थी, भारतवासियों की सीजन विंग्स के प्रोग्राम के टाइम 15 दिन यहाँ 15 दिन विदेश, तो आना जाना करते थे। और 30 साल में तो वहाँ के जो भी टीचर्स थे काफ़ी मैच्योर हो गए थे और उन्होंने संभाल लिया है। तो 2008 में जब मनोहर दादी बीमार थी तो दादी जानकी ने देखा कि यहाँ की जो भी बड़ी बहनें हैं या तो बीमार, जैसे प्रेम बहन है, अचल बहन है, बीमार रहती है, वो मधुबन नहीं रह सकती है, और सरला दीदी, संतोष दीदी कहे हमारा तो बड़ा जोन है, हम मधुबन नहीं रह सकते। तो दादी ने सोचा, जानकी दादी ने, क्योंकि प्रकाशमणि दादी तो चली गई थी उस समय, तो दादी ने चार्ली से पूछा कि निर्मला को यहाँ बुला ले में ठीक है? उसने कहा हाँ। तो अभी उनको कोई प्रश्न होता है तो ईमेल करते हैं, या फोन करते हैं, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप पर फोन भी फ्री होता है, तो लोग हैं कुछ ऐसा काम होता है तो फोन कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि इसका क्या करे क्या नहीं करे। तो काम चल जाता है, उन्हों को कुछ डाउट होता है तो सवाल पूछ लेते हैं। जब मैंने बम्बई छोड़ा तब सेंटर सिर्फ 6 साल चला था, 1966 में शुरू किया, 71 में विदेश गई, फिर तो सिर्फ बीच बीच में वीसा के लिए आना पड़ता था, तो भी दिव्या बहन ने संभाल लिया गांधी वाली, तो यहाँ तो 30 साल रही विदेश, तो सब पक्के मैच्योर हो गए।
और कुछ किसी को पूछना है? हाँ जी, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए और क्वेश्चन।
ओम शांति दीदी, एक पूछना था कि अभी हमारी जिंदगी जो है बहुत भागदौड़ वाली है, सुबह ऑफिस घर, तो ज्यादा करके हमें पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान तो देना है लेकिन उतना वक्त नहीं दे पा रहे, बहुत कम मिलता है। कभी कभी देखते कि पापा मम्मा ने, दादियों ने जो पुरुषार्थ किया, दीदियों ने जो किया, उतना हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे बढ़ाएं, कैसे करें, क्योंकि अभी ज्यादा साल तो बचे नहीं, तो किस बात के ऊपर ज्यादा अटेंशन दें जिससे हम अपने आप को और आगे लें, वक्त कम काम ज्यादा, तो कैसे करें?
कम वक्त में बहुत ज्यादा पुरुषार्थ हम कैसे करें?
भक्ति में
कम समय बहुत कम है, फाइनल टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, अभी हमारा मम्मा बाबा की तरह कोई पुरुषार्थ हुआ नहीं है, और यहाँ पर भी लौकिक जिम्मेवारियां भी होती है, तो पुरुषार्थ के लिए बहुत कम समय निकाल पाते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कम समय में बहुत बड़ा जंप लगाने की जरूरत है, अगर पास भी डानर होना है तो कौन सी विधि है शॉर्टकट? हाँ, दीदी ने 6 साल संभाला, फिर तो विदेश गए तो पूरा ही अलौकिक हो गए।
बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, तो इसलिए कभी ऐसे नहीं सोचना कि हम कैसे फास्ट जावें, क्योंकि बाबा रोज अभी साकार मुरलियों में भी डायरेक्शन देता रहता है कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, कर्मयोग करो, तो इसलिए पुरुषार्थ करने का तो डायरेक्शन मिलता रहता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे आगे बढ़े, क्योंकि भल ग्रस्त व्यवहार में रहते हो कर्मयोग कर सकते हैं। ये देखना है अमृत वेला और मुरली मिस ना करें, और बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना है, शाम को टाइम मिला तो आधा घंटा जरूर योग करें, भले 7 से 7:30 नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे कर लेवें, तो सोने के पहले आधा घंटा योग भी जरूर करना है शाम को। तो पुरुषार्थ के लिए तो बाबा रोज डायरेक्शन देते हैं। मन बाबा को अर्पित करना है, तन और धन अर्पित ना भी कर सके हो पर मन मन में एक बाबा दूसरा न कोई। तो जैसे दादी को कहा पतिव्रता पितावृता, तो बाबा को पति या पिता समझकर, और वैसे भी हम गाते हैं माता पिता बंधु सखा साजन सब वही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक बाबा से ही सर्व संबंध, घर में रहते भी अलौकिक संबंध से देखो, कमल फूल समान रहो।
ठीक है महन, मिला आपको उत्तर। और अभी समय हो चुका है तो हम यहीं पर पूरा करते हैं। गीत बजेगा, 5 मिनट लग जाएंगे उसमें भी, लेकिन दीदी के सानिध्य में बैठकर अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, ताली बजा दो। हाँ दीदी, खास अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं, दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे।